नमस्कार भारत, बुधवार 19 अगस्त, मैं हूं निखिल रंजन। प्रधानमंत्री के पैकेज से बिहार की राजनीति में उबाल, नीतीश कुमार को आपत्ति, क्यों कहा बिहार को बीमार।
बीमारू शब्द पर मुझे आपत्ति है, ये उन्होंने कहा और ये तथ्य है कि बिहार बीमारू राज्य से बाहर हो चुका है।
झारखंड में नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़, दो लोगों की मौत, रांची के एसपी भी जख्मी। आधी रात को पुणे की फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट से पुलिस ने 5 छात्रों को किया गिरफ्तार। खास बातचीत, बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिल्वर मेडल जीतकर वतन लौटी साइना नेहवाल से।
बहुत अच्छा लग रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल के साथ मैं घर वापस आई हूँ और काफी दिनों का मेहनत लगा है, काफी हार्डवर्क गया है इसमें और जो परफॉर्मेंसेज आई है बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंस थी।
खबरें होंगी और भी, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, संदीप सोनी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। विरोधी राजनीतिक दलों ने इस घोषणा पर कड़ी आपत्ति जताई है और आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनावों में फायदा हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोप पहुंचने वाले प्रवासियों की संख्या बढ़ती जा रही है। यूरोपीय संघ की सीमा नियंत्रण एजेंसी फ्रंटेक्स ने 1,07,000 से ज्यादा प्रवासियों की आमद दर्ज की है। बीते जुलाई महीने में जून की तुलना में लगभग 40,000 अधिक प्रवासी गैर आधिकारिक तरीकों से यूरोप पहुंचे हैं। ग्रीस, हंगरी और इटली वो देश हैं जहां सबसे अधिक प्रवासी पहुंचते हैं। ज्यादातर प्रवासी सीरियाई, अफगान और अफ्रीकी देशों के हैं जो गरीबी और संघर्ष से तंग आकर दूसरे देशों में शरण ले रहे हैं। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना पर पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पुतिन ने क्राइमिया का दौरा किया है जिसकी आलोचना हो रही है। इन आलोचनाओं को खारिज करते हुए पुतिन ने सेवस्टोपोल में कहा, क्राइमिया का भविष्य स्वयं क्राइमिया के लोगों ने तय किया था जो इस इलाके में रहते हैं। उन्होंने रूस में शामिल होने के लिए वोट दिया था, इसलिए ये बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के शब्द। आप सुन रहे हैं बीबीसी समाचार। थाईलैंड की पुलिस बैंकॉक धमाके के सिलसिले में उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश कर रही है जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है। बैंकॉक में 2 दिन पहले हिंदू मंदिर के पास बम धमाका हुआ था जिसमें कम से कम 20 लोग मारे गए थे और 120 लोग घायल हुए थे। दक्षिणी नेपाल में प्रस्तावित नए संविधान के विरोध में प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चलाई हैं जिसमें एक किसान मारा गया है और कई अन्य घायल हुए हैं। नेपाल में बीते कुछ दिनों में नए संविधान के विरोध में हुए प्रदर्शनों में कुल 4 लोग मारे जा चुके हैं। नेपाल का दक्षिणी इलाका कई वर्षों तक अशांत रहा है और ताज़ा घटनाक्रम से वहाँ हिंसा दोबारा बढ़ने की आशंका पैदा हो गई है। अमेरिका ने कहा है कि वो दक्षिणी सूडान में शांति वार्ता को विफल करने वालों के खिलाफ प्रतिबंधों की बात संयुक्त राष्ट्र में उठा रहा है। अमेरिका ने इस बात पर निराशा जताई है कि राष्ट्रपति सल्वा कीर ने अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता में हुए शांति समझौते पर दस्तखत नहीं किए। अमेरिका का कहना है कि 15 दिनों के भीतर सल्वा कीर ने समझौते पर दस्तखत नहीं किए तो प्रतिबंधों पर औपचारिक बातचीत शुरू हो जाएगी। पता चला है कि उत्तर पूर्व नाइजीरिया में बोको हराम के संदिग्ध चरमपंथियों ने एक गांव पर हमला करके कम से कम 60 लोगों की हत्या कर दी है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत, बीबीसी रेडियो की पहली सभा में आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम आप मोबाइल और bbchindi.com पर भी सुन रहे हैं। आज निखिल रंजन के साथ। शुरुआत करते हैं बिहार से, जहां चुनावी माहौल नजर आने लगा है। नेताओं के दौरे, रैलियां और आरोप प्रत्यारोप, यानी वो सब कुछ जो चुनावों के दौरान होता है, वो दिखने लगा है। मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरा और सहरसा में रैलियों को संबोधित किया और बड़े पैकेज का ऐलान किया तो उनके कई बयानों को लेकर जोरदार राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सुनने को मिली। सुनिए समीर आत्मज मिश्र की ये रिपोर्ट।
संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिन की यात्रा के बाद जब नरेंद्र मोदी मंगलवार को बिहार पहुंचे तो उन्होंने इस बात का उल्लेख करने में भी कोई कोताही नहीं की।
बहुत ही जल्द सवेरे सवेरे मैं दुबई से आया, आपके पास पहुंच गया।
साथ ही चुनावी माहौल में वो बिहार पहुंच रहे हैं, इस बात का भी मोदी ने ख्याल रखा। और बिहार का आदमी किस बात से सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है, उस मनोविज्ञान को पकड़ने की भी उन्होंने भरपूर कोशिश की।
हम भोजपुर आयल वाले बाबू वीर कुंवर सिंह ये धरती पर रौरा लोकान के
नरेंद्र मोदी ने बिहार को 125,000 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की और दोनों जनसभाओं में इसका उल्लेख किया।
जो मैं 125,000 करोड़ कह रहा हूँ ये 40,000 करोड़ उसमें नहीं है, 40,000 करोड़ अलग, और इसलिए कुल पैकेज बन जाता है 1,65,000 करोड़ रुपए का पैकेज बिहार के विकास के लिए, बिहार की जनता की भलाई के लिए।
साथ ही उन्होंने बिहार सरकार को इस बात के लिए आड़े हाथों भी लिया कि वो पैकेज के तहत मिले रुपयों को खर्च ही नहीं कर पाती, ये भी कहा कि बावजूद इसके अक्सर रुपयों की मांग की जाती है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने तुरंत बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी आपत्ति दर्ज कराई।
बीमारू शब्द पर मुझे आपत्ति है ये उन्होंने कहा, और ये तथ्य है कि बिहार बीमारू राज्य से बाहर हो चुका है, और जिन राज्यों को बीमारू कहा जाता था उन्होंने खुद ही अपने भाषण में, पूर्व के भाषण में, उनको उससे बाहर निकाल दिया था। तो जिस मापदंड पर उन्होंने मध्य प्रदेश और राजस्थान को बाहर निकाला था वो अगर प्रकट करते तो हम लोग भी बता देते उन मापदंडों पर हम लोग कैसे बाहर हैं। तो खैर, देश के प्रधानमंत्री हैं, जो मन में आए बोले, जिस राज्य में जाएं बात तो करेंगे कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की, लेकिन आचरण करेंगे उसके प्रतिकूल, राज्य की सरकार को जलील करेंगे।
वहीं दूसरी ओर जानकारों ने भी मोदी की ओर से घोषित पैकेज की विशालता पर सवाल उठाए हैं। पटना के वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र तिवारी कहते हैं,
अगर आप देखें तो रेल परियोजनाएं नई नहीं है, जो रेलवे ओवर ब्रिजेज बनने हैं वो नए नहीं है, उनमें कई पर काम चल रहा है। इलेक्ट्रिफिकेशन की जो प्रोजेक्ट उन्होंने बताए हैं वो प्रोजेक्ट पहले से ही दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत चल रहे हैं। गंगा कोसी पर जो पुलों की घोषणा की है वो पुल पहले से बन रहे हैं। आईआईएम के निर्माण की घोषणा की है तो आईआईएम में पढ़ाई इस साल शुरू हो गई है और उसकी बिल्डिंग का निर्माण गया में होना है। स्किल डेवलपमेंट मेगा यूनिवर्सिटी की घोषणा की है तो जो स्किल डेवलपमेंट अभियान गवर्नमेंट का है उसके तहत हर राज्य में इस तरह के सेंटर खुलने हैं। तो मुझे लगता है कि इसमें कुछ नया नहीं है और ये स्पेशल पैकेज के नाम पर पुराने जो घोषणाएं हैं उनको एक साथ रख के उन्होंने पेश कर दिया है।
बहरहाल, पैकेज में नया क्या है पुराना क्या है इससे आम लोगों को शायद बहुत लेना देना न हो, लेकिन 125,000 करोड़ रुपए काफी होते हैं इसका तो एहसास सभी को होगा। जानकार कहते हैं कि मोदी भी लोगों को यही एहसास कराना चाहते थे। अब लोगों ने इसे कितना समझा या नहीं समझा ये सब चुनाव के बाद पता चलेगा, अभी तो लोग चुनाव से पहले के दंगल का ही लुत्फ उठा रहे हैं। समीर आत्मज मिश्र, BBC दिल्ली।
बिहार चुनाव की सरगर्मियों के बीच सत्ताधारी जनता दल यूनाइटेड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उनके ही एक पुराने बयान के जरिए घेरने के लिए अभियान चला रहा है। 25 जुलाई को मुजफ्फरपुर की परिवर्तन रैली में प्रधानमंत्री ने सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के DNA पर सवाल उठाया था। पहले तो लालू प्रसाद और फिर नीतीश कुमार की अगुवाई वाले महागठबंधन ने विरोध करते हुए इस टिप्पणी को पूरे बिहारियों का अपमान बताया, और फिर 10 अगस्त को नीतीश कुमार ने शब्द वापसी अभियान की घोषणा कर दी। कैसे इकट्ठा किए जा रहे हैं इस अभियान के तहत DNA के नमूने और क्या है लोगों की राय, बता रहे हैं पटना से मनीष शांडिल्य।
राजधानी वाटिका यानी इको पार्क पटना के सबसे बड़े और खूबसूरत पार्कों में से एक है। बीते कुछ दिनों से पार्क के मुख्य फाटक के पास लगाए कैंप और वहां बसते गाने लोगों का ध्यान खींच रहे हैं। यह शब्द वापसी कैंप है। यहां DNA जांच के लिए लोगों के बाल और नाखून के नमूने लिए जा रहे हैं। शब्द वापसी अभियान के समर्थन में लोगों से पोस्टकार्ड भरवाए जा रहे हैं। अभी पूरे बिहार में लगभग हर रोज करीब 500 जगहों पर ऐसे कैंप लगाए जा रहे हैं। राजधानी वाटिका के करीब के कैंप की जिम्मेदारी संभाल रहे शिव श्याम गौरव बताते हैं,
पब्लिकों को आते हैं तो हम उन्हें बस यही समझाते हैं कि आप अपने DNA सैंपल के लिए अपने नाखून या सर का बाल काट कर दे सकते हैं और आपके DNA जाँच के लिए भेजा जाता है। बिहारी होने पर गर्व है, मेरी DNA में कोई गड़बड़ी नहीं है, शक है तो आप जांच कर लो।
कैंप पर शिव और उनके साथी जब अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे होते हैं तो इस दौरान सवाल जवाब का भी दौर चलता है। समझने समझाने के दौर के बाद जो लोग इस अभियान से जुड़ते हैं उनके नाखून या बाल का नमूना लेकर उसे प्लास्टिक के एक छोटे बैग में सहेज कर रखा जाता है। राजधानी वाटिका के बाहर शब्द वापसी कैंप तक आने वालों में सीतामढ़ी के बेलसंड के योगेंद्र मुखिया भी थे। उनका मानना है कि प्रधानमंत्री की डीएनए वाली टिप्पणी से पूरे बिहार का अपमान हुआ है।
मैं समझता हूं कि पूरे बिहार वासियों को अपमान किया गया, उन्हें अपने वक्तव्य को वापस लेना चाहिए। जनहित में, यदि जनतंत्र में, वह प्रजातंत्र के राजा है।
लेकिन ऐसा भी कुछ एक बार होता है कि कैंप तक आने वाला शख्स अपना डीएनए सैंपल दिए बिना ही लौट जाए। इनमें से एक पटना के कंकड़बाग के रहने वाले विवेक जैसे युवा भी थे। वे शब्द वापसी कैंप के पास दो बार आए, सवाल जवाब किया, लेकिन अभियान से नहीं जुड़े। उनका तर्क था,
बिहार का अपमान नहीं था, ये बिहार के जो नेता थे उनका अपमान था। जो हमारे नेता जो कर चुके हैं बिहार में उनका अपमान था, बल्कि यहाँ पे हमारे जो नेता हैं अभी, जो नीतीश सर ने जो किया है वो उनके अपमान है, बल्कि बिहारी का अपमान नहीं है।
दूसरी ओर ऐसा भी नहीं कि कैंपों तक आने वाले हर एक को डीएनए का सही मतलब पता ही हो, और ना ही कैंप में मौजूद कार्यकर्ता उन्हें इसके बारीकियों के बारे में बताते हैं। कैंप तक आए कई लोगों ने बातचीत में बताया कि वे समझते हैं कि इसका मतलब खून में मिलावट से है। इस अभियान के तहत नरेंद्र मोदी को 50 लाख डीएनए सैंपल भेजने का लक्ष्य रखा गया है। इंडियन पॉलिटिकल एक्शन कमेटी यानी आईपैक जदयू के इस अभियान को जमीन पर उतारने का काम कर रही है। वह पूरे सूबे से डीएनए नमूनों को इकट्ठा कर रही है। पहले चरण में 5 लाख नमूने जमा किए जाने हैं। इन्हें महागठबंधन की 30 अगस्त की स्वाभिमान रैली के बाद दिल्ली भेजा जाएगा। इस अभियान से जुड़े एक दिलचस्प पहलू के बारे में आईपैक टीम के शशांक मेहता बताते हैं।
हमने सोचा नहीं था कि लोग इतना आसानी से बाल अपने दे देंगे काट काट के, परंतु जिस एक्साइटमेंट से लोग इसमें जुड़े हैं और जो लोगों के अंदर का जो वो अभिमान वाली जो बात है वो जो निकल के आई है, हमने सोचा नहीं था, पर ये लोग बड़ी आसानी से अपने बाल काट के दे रहे हैं और बड़ी आसानी से अपना नाखून तो चली फिर भी ठीक है, पर पुरुष नहीं महिलाएं तक भी उनको अपने बाल काट के देने में बिल्कुल झिझक वाली कोई बात नहीं है।
नीतीश कुमार ने इस अभियान की घोषणा करते हुए ट्वीट किया था कि हमारे बार बार के अनुरोध के बाद भी मोदी जी ने हमारे डीएनए के बारे में अपनी अपमानजनक टिप्पणी वापस नहीं ली है, ऐसे में हम शब्द वापसी अभियान शुरू कर रहे हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि नीतीश कुमार इस अभियान के जरिए लोगों की सहानुभूति बटोरना चाहते हैं। पार्टी के बिहार इकाई के प्रवक्ता और विधायक प्रेमरंजन पटेल,
जो डीएनए की बात की जा रही है ये किसी व्यक्तिगत डीएनए की बात नहीं की गई है, इसमें पॉलिटिकल डीएनए की बात की गई है कि बिहार में का जो डीएनए है वो सम्मान का डीएनए है, अतिथि सत्कार का डीएनए है, और जिसको जिस रूप में इसको प्रचारित और प्रसारित किया जा रहा है वो यह केवल जो है लोगों के बीच में फैलाकर और एक सिंपैथी लेना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता इसको,
शायद भारत की राजनीति में ऐसा पहली बार हो रहा है कि डीएनए एक मुद्दा बना है। ऐसे में डीएनए की खोज करने वाले वैज्ञानिक फ्रांसिस क्रिक और जेम्स वाटसन भी जरूर चकरा रहे होंगे। मनीष शांडिल, बीबीसी पटना।
झारखंड की राजधानी रांची के पास खूंटी जिले में नक्सलियों और पुलिस के बीच कल शाम मुठभेड़ हुई है। इसमें एक नक्सली और एक पुलिसकर्मी की मौत की खबर है। इस मुठभेड़ में रांची के एसएसपी प्रभात कुमार को भी गोली लगी है। रवि प्रकाश इस खबर पर नजर रखे हुए हैं। अब से कुछ ही देर पहले मैंने उनसे इस बारे में जानकारी मांगी।
रांची और खूंटी दो जिले हैं, इनके बॉर्डर का एक गांव है गुलमी, जहां पे कल पुलिस और नक्सली बीच मुठभेड़ हुई। शाम 4:30 बजे की घटना है, जिसमें रांची के एसएसपी प्रभात कुमार घायल हुए हैं और अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया है। अभी डॉक्टरों ने उनकी हालत खतरे से बाहर बताई है, वो बाहर आ जाएंगे। और दो लोग इसमें मारे गए हैं, इसमें एक नकली चंदन जी हैं जो एरिया कमांडर बताए जाते हैं, और एक पुलिस का जवान है जो एसएसपी की गाड़ी को ड्राइव कर रहा था।
क्या कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है, उनके साथ उनसे क्या बरामद हुआ है, ऐसी कोई जानकारी है?
ये पुलिस को सूचना मिली थी कि नक्सलियों का एक ग्रुप जो है वो कैंप कर रहा है खूंटी जिले में, जिसके लिए पुलिस यहाँ से गई। ऐसा भी कहा जा रहा है कि नक्सलियों ने ही ट्रैप कर लिया पुलिस को, क्योंकि तो कई बार ऐसा होता है जब नक्सली ही इन्फॉर्म करते हैं और पुलिस उनके से ट्रैप हो जाती है। तो जब पुलिस जा रही थी तभी यह हमला हुआ, तीन तरफ से पुलिस की गाड़ी पे गोलियां चलाई गई, तो जाहिर है कि पुलिस ने भी क्रॉस फायरिंग की और ये दो लोग मारे गए। इसके बाद रात भर पुलिस ने वहां कॉम्बिंग की है और लोगों को अरेस्ट किया है। अपुष्ट सूचना है हालांकि ये कि 5-6 नक्सली अरेस्ट किए गए।
आपने बताया कि एसएसपी प्रभात कुमार जख्मी हुए हैं, क्या उनको गोली लगी है?
जी, उनकी कांख के पास गोली लगी है, जिसे निकाल लिया गया है और घटना बड़ी थी। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उन्हें फोन किया, मुख्यमंत्री उन्हें देखने रात को अस्पताल में गए थे, रांची के एक बड़े अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा है। डीजीपी ने कहा है कि पुलिस को सूचना मिली थी जिससे पुलिस जा रही थी, लेकिन पुलिस के दूसरे ऑफिसर कहते हैं कि शायद नक्सलियों ने ट्रैप कर लिया पुलिस को, इसकी वजह से घटना।
ये इलाका कैसा है, क्या जंगल का इलाका है या शहर का इलाका है जहाँ ये मुठभेड़ हुई है?
खूंटी नक्सल प्रभावित जिला है जहाँ पर नक्सलियों की गतिविधियों के हिसाब से काफी संवेदनशील माना जाता है, जंगल शुरू हो जाता है वहां से, और जो इलाका दुलमी है जहाँ पे ये मुठभेड़ हुई है ये जंगल का इलाका है, वो जंगल में ये मुठभेड़ हुई और जहाँ पहले से 40 के आसपास नक्सलियों की भीड़ वहां पे थी जब पुलिस वहां गई।
ये थे रवि प्रकाश जो बता रहे थे नक्सलियों से हुए मुठभेड़ के बारे में, झारखंड में ये मुठभेड़ हुई है। इधर पुणे की फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट में आधी रात को पुलिस पहुंची और 5 छात्रों को गिरफ्तार कर लिया। इन छात्रों ने एफटीआईआई के निदेशक को उनके दफ्तर में बंद कर दिया था। इस बारे में जानकारी के लिए थोड़ी देर पहले मैंने स्थानीय पत्रकार अश्विनी घोर से बात कर ये जानकारी मांगी।
तड़के 2:30 बजे के आसपास एफटीआईआई में जाकर पुणे पुलिस ने 5 विद्यार्थियों को, छात्रों को गिरफ्तार किया है। उन पर आरोप ये है कि अनलॉफुल असेंबली और डिस्ट्रक्शन टू पब्लिक प्रॉपर्टी। एफटीआईआई के जो डायरेक्टर है प्रशांत पाठराबे, उन्होंने असेसमेंट का एक निर्णय लिया था, फिल्म्स जो बनाते हैं लोग, जिसका इन लोग विद्यार्थी विरोध कर रहे थे, जिसके चलते उन्होंने प्रशांत पाठराबे को 6 घंटे में उनके ऑफिस में बंद करके रखा था। जिसके बाद एफटीआईआई के संचालक है प्रशांत पाठराबे, उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज की थी, जिसके बाद आज सुबह 2:30 बजे पुलिस की एक टीम एफटीआईआई पहुंची और उन्होंने 5 विद्यार्थी छात्रों को गिरफ्तार कर लिया है।
ये विद्यार्थी कौन थे और इनकी क्या मांग थी और ये कैसे मुमकिन हो पाया कि इन लोगों ने बंधक बना लिया वहाँ पर एफटीआईआई के अधिकारी को?
ये विद्यार्थी जो है वो 2008 से उन्होंने अपना फाइनल असेसमेंट सबमिट नहीं किया है, फिल्म बना के असेसमेंट के लिए सबमिट करना पड़ता है। 2008 के बैच के स्टूडेंट्स ने भी अभी तक इसको नहीं किया है। तो जो संचालक है प्रशांत पाठराबे, उन्होंने ये निर्णय लिया कि जिन लोगों ने जिस भी स्थिति में सबमिशन किया है उसका असेसमेंट करके रिजल्ट डिक्लेयर किया जाएगा। छात्रों की मांग थी कि उन्हें और समय दिया जाए, लेकिन एफटीआईआई के डायरेक्टर ने यह मांग मानने से इनकार कर दिया था। उनके कार्यालय में जाकर छात्रों ने उनको घेराव किया था और वहां उन्होंने कार्यालय में ही उनको 6 घंटे तक बंधक बना के रखा था। इस तरह की कंप्लेंट प्रशांत पाठराबे द्वारा डेक्कन पुलिस स्टेशन में की गई थी पुणे, जिसके बाद ये अरेस्ट हुए है।
पुलिस का क्या कहना है, वो क्या करने वाली है अब इसके बाद?
प्रशांत पाठराबे ने जो लिस्ट दी है उसमें कुछ छात्राओं के भी नाम हैं, जिनको अरेस्ट करने के लिए हो सकता है कि आज सुबह पुलिस की एक टीम फिर से एफटीआईआई जाए। कुल 17 छात्रों की लिस्ट है, जिसमें से 5 को पुलिस अब तक गिरफ्तार कर पाई है। बाकी जो डेक्कन पुलिस से जानकारी मिली है उसके अनुसार पुलिस की टीम एफटीआईआई के कैंपस पहुंचने ही, जैसे इनको पता चला कि शायद उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, तो बाकी छात्र वहां से भाग गए। छात्राओं को भी गिरफ्तार करने के लिए आज हो सकता है कि वो जाए और अरेस्ट करने के बाद उनको कोर्ट में प्रोड्यूस करके आगे की कार्रवाई की जाएगी।
एफटीआईआई के 5 छात्रों को गिरफ्तार किया पुलिस ने, जानकारी दे रहे थे अश्विन अघोर। नमस्कार, भारत आप सुन रहे हैं बीबीसी रेडियो पर निखिल रंजन के साथ। चंडीगढ़ की एक अदालत ने सॉफ्ट ड्रिंक बनाने वाली कंपनी कोका कोला को एक नोटिस भेजा है। इस नोटिस में कंपनी पर आरोप लगाया गया है कि कंपनी ने एक महिला को फिल्म स्टार ऋतिक रोशन के साथ मुलाकात कराने का अपना वादा नहीं निभाया। शिखा मोगा नाम की ये महिला 2000 में कोका कोला की ओर से आयोजित कराई गई एक प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार जीतने में सफल हुई थी। कंपनी ने इस प्रतियोगिता में पहला पुरस्कार ऋतिक रोशन के साथ एक रोमांटिक डिनर रखा था, लेकिन महिला का कहना है कि कंपनी ने उनकी मुलाकात ऋतिक रोशन से नहीं कराई। महिला ने कंपनी पर 2.5 करोड़ रुपए का दावा करते हुए कहा है कि इस घटना से उनकी छवि को काफी नुकसान पहुंचा है। हमारे सहयोगी रविंदर सिंह रॉबिन ने शिखा से इस बारे में बात की।
काफी दिन तक तो मैं मानी नहीं थी कि ये सच में हो गया, तो उसके बाद फिर मुझे हुआ कि नहीं, ये सच में है, हमारा एजुकेशन सिस्टम पूरा अच्छा है, मेरे को बिलीफ रखना चाहिए, ये था सबसे पहली चीज।
अब आप इस केस को आगे चलाएंगी या अगर कोका कोला कंपनी आपको कॉम्प्रोमाइज की बात करती है या ऋतिक से दोबारा मिलाने की बात करती है?
देखिए, इस चीज का मैंने अभी कुछ नहीं सोचा, अभी तो इस केस का आगे आया है, थोड़ा माइंड कूल हुए, अभी तो थोड़ा एक्साइटमेंट भी खत्म हुई कि ऐसे आगे चला गया, किसी तो सोचा ही नहीं हमें क्या करना चाहिए, क्या सही है।
अगर वो आपसे ऋतिक से मिलाने की बात करें तो
अब बहुत लेट नहीं हो गया, 15 ईयर्स बहुत होता है, उनको बहुत टाइम मिला है, अब जाके जब सब हो गया तो अब बोले ऋतिक से मिल लो, अब क्या फायदा, वो तो होता है ना आप तो प्राइज जीतते हो, आप तो साथ जीते हो, आपको साथ मिलके तो अच्छा लगता है, 15 साल बाद कार का मॉडल ही खत्म हो गया बनना, मिल गया तो कार उसके बाद फिर क्या फायदा।
जब ये बात चलती रही 3-4 साल आपको नहीं ऋतिक से मिलाया, तो वॉज देयर एनी ह्यूमिलेशन या आपको लगा कि लोग आपको तंग कर रहे हैं या कुछ इस तरह का कि हाँ बात कर रहे हो कि ऋतिक से क्यों नहीं मिले जब आपने प्राइज जीता था।
हाँ बहुत ज्यादा, मुझे कॉलेज की लड़कियां मेरे पे बहुत हंसती थी, मतलब वो दिन वो पता है जब हम 18-19 होते हैं तो ऐसे कोई कोई बताए कि अच्छा मेरे साथ मतलब तुम्हें तो कोई प्राइज मिला है और आपको वो मिलता ही नहीं है, स्पेशली ऐसा प्राइज जिसमें मतलब वो तो क्रेज था उस टाइम पे ऋतिक को, उसकी मूवी आई थी कहोना प्यार है, तो उस टाइम पे तो एवरीबडी वॉज अ बिग फैन एंड मुझे पता चला था कि कंट्री में किसी ने नहीं प्राइज जीता, सिर्फ मैं हूँ जिसको मिला, तो उसके बाद भी नहीं मिला एंड ऑब्वियसली सबने मजाक तो बहुत उड़ाया, उनको लगा था मैं ऐसे ही झूठ बोल रही हूँ ताकि मुझे टेंशन मिले।
आप समझते हैं कि कोका कोला कंपनी जैसी मल्टीनेशनल कंपनी जो है इसने चीट किया है आपको?
बिल्कुल ये चीटिंग ही है और क्या है, अगर नहीं था प्राइज तो निकाला क्यों उन्होंने, इतना पब्लिसाइज करके इतना अपना उन्होंने तो खूब उन्होंने कोक को बेचा होना है, मैंने कितनी खरीदी है, मैं रोज 2-3 कोक पीती थी, ये मेरा कैलेंडर निकल आए, वो कैलेंडर पोस्टर निकल आए ऋतिक रोशन का, मेरे रूम में सारा ऋतिक रोशन के पोस्टर होते थे उस टाइम पे एवरीवेयर इंक्लूडिंग रूम।
इसके बाद अब व्हाट नेक्स्ट, अब क्या करने वाली हैं?
वही मैं आपको बता रही थी, व्हाट नेक्स्ट का मुझे नहीं पता है, जुडिशियल सिस्टम के जो है वही हम लोग को फॉलो करना होगा प्रोसीजर, व्हाट नेक्स्ट तो आई थिंक वही बताएंगे सदा।
ऋतिक रोशन से मुलाकात नहीं कराने पर कोका कोला को मिला चंडीगढ़ की अदालत से नोटिस, जानकारी दे रहे थे रविंदर सिंह रॉबिन। और अब बारी है अखबारों की समीक्षा की, हमारे सहयोगी संदीप सोनी अखबारों पर नजर डाल चुके हैं, बताइए संदीप जी आज क्या है अखबारों में?
निखिल शुरुआत कर रहे हैं अंग्रेजी के अखबार द हिंदू से, अखबार की पहली खबर श्रीलंका के संसदीय चुनाव के नतीजे पर आधारित है जिसमें लिखा है रानिल विक्रमसिंघे बतौर प्रधानमंत्री सत्ता में वापसी कर रहे हैं और इसके साथ ही पूर्व राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे की उम्मीदों पर पानी फिर गया है। इसी अखबार में दूसरी खबर दिल्ली और अपराध के संबंध में प्रमुखता से छपी है जिसमें लिखा है कि दिल्ली सिर्फ भारत की ही राजधानी नहीं बल्कि रेप कैपिटल भी है जहां पर सबसे ज्यादा बलात्कार होते हैं। अगला अखबार इंडियन एक्सप्रेस देखें तो इसके पहले पन्ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मुस्कुराकर हाथ मिलाते हुई तस्वीर छपी है। खबर की सुर्खी है मोदी ने नीतीश का मजाक उड़ाया, कहा बीमारू नहीं तो डॉक्टर के पास जाने की क्या जरूरत है। और ये भी लिखा है कि आर्थिक पैकेज और जंगल राज की चेतावनी देकर नरेंद्र मोदी बिहार में वोट मांग रहे हैं। दैनिक भास्कर देखें तो दैनिक भास्कर में ये खबर पहले पन्ने पर है और सुर्खी लगी है कितना दूं, बिहार के लिए विशेष पैकेज पर नीतीश कुमार बोले मोदी जी ने ऐसे दिया जैसे बोली लगा रहे हों। इसी खबर पर हिंदुस्तान ने लिखा है कि मोदी ने बिहार को मालामाल किया, इसके अलावा बत्ती लाल बत्ती और चमचमाती सफ़ेद सरकारी गाड़ी से पति पत्नी अपने बच्चों के साथ उतरे हैं स्कूल की तरफ बढ़ रहे हैं। इस कार्टून के साथ दैनिक भास्कर में खबर छपी है कि सरकारी अफसर नेता और जज इन सबको इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में ही पढ़ाओ वरना निजी स्कूलों में दी जाने वाली फीस के बराबर पैसा जो है वो सरकारी खजाने में जमा कराना होगा।
किसी अधिकारी की प्रतिक्रिया आई है कि नहीं अब तक इस पर?
आई भी होगी तो मुझे लगता नहीं किसी अखबार में छपी है, मेरी नज़र ऐसी किसी खबर पर नहीं पड़ी है। नवभारत टाइम्स के पहले पन्ने पर भी यही खबर है बिल्कुल। और इसके अलावा राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की पत्नी शुभ्रा मुखर्जी का निधन, हिमाचल के मणिकरण में भूस्खलन की वजह से 10 लोगों की मौत, ये कुछ ऐसी खबरें हैं जो अधिकतर अखबारों के पहले पन्ने पर छपी हैं।
बहुत शुक्रिया संदीप अखबारों की समीक्षा के लिए। और अब डालते हैं उन खबरों पर नज़र जिन पर बीबीसी आज पूरे दिन नजर रखेगी।
गौमांस पर प्रतिबंध लगाने वाले महाराष्ट्र सरकार के कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर बॉम्बे हाईकोर्ट आज सुनवाई करेगा। भारत के पूर्वोत्तर राज्य असम के 8 जिलों में बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है जहां कई नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। आर्म्स एक्ट मामले में 5 गवाहों से दोबारा सुनवाई के लिए अभिनेता सलमान खान की याचिका पर जोधपुर की अदालत आज आगे की सुनवाई करेगी। महाराष्ट्र के नासिक में कुंभ मेले में आज विभिन्न अखाड़ों का झंडारोहण होगा। इसी कार्यक्रम से नासिक कुंभ की वास्तविक शुरुआत मानी जाती है।
पिछले दिनों विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल कल वापस लौट आईं अपने देश। उनकी कामयाबी को लेकर हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त ने उनसे बात की, आइए आप भी सुनिए।
बहुत अच्छा लग रहा है, वर्ल्ड चैंपियनशिप मेडल के साथ मैं घर वापस आई हूँ और काफी दिनों का मेहनत लगा है, काफी हार्डवर्क गया है इसमें और जो परफॉर्मेंसेज आई हैं बहुत ही अच्छी परफॉर्मेंसेज थी इस टूर्नामेंट में और थ्रू आउट बहुत अच्छा खेली मैं। ऑफकोर्स फाइनल्स में और थोड़ा बेटर खेल सकती थी और अच्छा परफॉर्मेंस डाल सकती थी, लेकिन कहीं थोड़ी सी चूक हो गई मुझसे, लेकिन आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी बैक विद द सिल्वर मेडल एंड आई होप कि और अच्छा प्रैक्टिस करूं आने वाले टूर्नामेंट्स में और अच्छा परफॉर्म करूं।
क्वार्टर फाइनल और सेमीफाइनल में भी बहुत ही जबरदस्त खेल आपने दिखाया। इंडोनेशिया की फेनेत्री की बात की जाए तो लोकल सपोर्ट भी उनको था।
हाँ, लोकल सपोर्ट बहुत ज्यादा था लिंडा वेनी फेनेत्री को, लेकिन उसके साथ अगर आप देखें क्वार्टर फाइनल मैच सबसे बड़ा मैच रहा टूर्नामेंट का, जहाँ पे मैंने वैंग येहान को हराया जो काफी अच्छी फॉर्म में थी इस टूर्नामेंट से पहले। वो चाइनीज टाइपे टूर्नामेंट भी जीती है, फाइनली मैं मैच जीत गई 21-18 पे, जो बहुत ही क्रूशियल मैच था। और लास्ट 5 वर्ल्ड चैंपियनशिप टूर्नामेंट्स में मैं क्वार्टर फाइनल्स में हारी थी, तो इस बार मैंने बहुत ही अच्छा खेला वो लास्ट फ्यू पॉइंट्स और वो मैंने मैच निकाला तो काफी अच्छा लगा। इनफैक्ट इन द सेमीज ऑल्सो आई वॉज एक्चुअली प्लेइंग अगेंस्ट द क्राउड, क्योंकि क्राउड इतना ज्यादा था कि वो लिंडा वेनी को इतना सपोर्ट कर रहा था कि काफी जो मैंने जो मिस्टेक्स किए थे वो एक्चुअली बिकॉज ऑफ दैट स्मॉल एरर्स, वो क्राउड की जो चीयरिंग की वजह से। अदरवाइज आई थिंक जो मैच जो क्वार्टर फाइनल मैच था वो सबसे ज्यादा टफ मैच था मेरे लिए।
और फाइनल में कैरोलिन मरीन ने बहुत ज्यादा शोर मचाया, क्या ये भी एक खास वजह रही कि उन्होंने पूरी तरह से अपनी ओर से डिस्टर्ब करने की कोशिश की, अंपायर ने भी उन्हें चेतावनी दी?
हाँ देखिए, ऐसा तो होता रहता, फाइनली एक मैच है, मैं बस यही ट्राई करूंगी अगली बार के और रेडी रहूं और अलर्ट रहूं और नेक्स्ट टाइम और बेटर परफॉर्म कर सकूं। जो मिस्टेक इस बार हुई है आई होप आई डोंट रिपीट दैट अगेन।
वैसे तो ये साल आपके लिए बहुत स्पेशल रहा क्योंकि ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन टूर्नामेंट के फाइनल में भी आप पहुंची और सबसे अच्छी बात यह कि आपकी फिटनेस बहुत शानदार है।
जी, फिटनेस बहुत अच्छी चल रही है, टचवुड काफी हद तक अच्छी ट्रेनिंग चल रही है और अच्छी तरह से अब मैं अपना फिटनेस मेंटेन कर रही हूँ। ऐसे ये साल तो बहुत ही एक ड्रीम रन की तरह रहा है, काफी मेडल्स आ रहे हैं, काफी टाइटल्स आ रहे हैं, तो आई होप कि ऐसे ही फॉर्म कंटिन्यू रख सकूं मैं और जो इंजरीज हैं उनसे थोड़ा केयरफुल रह के और अपनी बॉडी को और ध्यान दे के और अच्छी तरह से मैं परफॉर्म कर सकूं।
साइना जी, वैसे तो ओलंपिक्स में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली आप भारत की पहली खिलाड़ी हैं, लेकिन ये जो विश्व चैंपियनशिप का मेडल है, पहली भारतीय खिलाड़ी जो फाइनल तक पहुंची, ये आपके लिए कितना स्पेशल है?
ये मेडल भी मेरे को बहुत बहुत ज्यादा स्पेशल है क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम फाइनल्स में पहुंची हूँ इतने दिन, 5 टाइम्स क्वार्टर फाइनल्स में स्ट्रगल करने के बाद, लेकिन ओलंपिक मेडल हमेशा मेरे बहुत क्लोज रहेगा क्योंकि वो एक मेडल है जो सब प्लेयर जीतना चाहते हैं और वो बहुत ही ज्यादा प्रेस्टिजियस टूर्नामेंट है एंड आई एम वेरी हैप्पी टू हैव एन ओलंपिक ब्रॉन्ज मेडल। लेकिन मैं अब जरूर ट्राई करूंगी कि इस बार जो नेक्स्ट ओलंपिक्स आए वहाँ पे और अच्छा परफॉर्म कर सकूँ।
विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप में रजत पदक जीतने वाली भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल, उनसे बात कर रहे थे हमारे सहयोगी आदेश कुमार गुप्त। और अब आखिर में प्रमुख समाचार एक बार फिर।
बीबीसी समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के लिए 125,000 करोड़ रुपए की योजनाओं की घोषणा की है। विरोधी राजनीतिक दलों ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी आगामी विधानसभा चुनावों में फायदा हासिल करने की कोशिश कर रही है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने यूक्रेन की सेना पर पूर्वी यूक्रेन में संघर्ष को बढ़ावा देने का आरोप लगाया है। पुतिन ने क्राइमिया का दौरा किया है जिसकी आलोचना हो रही है। थाईलैंड की पुलिस बैंकॉक धमाके के सिलसिले में उस संदिग्ध व्यक्ति की तलाश कर रही है जो सीसीटीवी फुटेज में नजर आया है। दक्षिणी नेपाल में प्रस्तावित नए संविधान के विरोध में प्रदर्शन कर रही भीड़ पर पुलिस ने गोलियां चलाई हैं जिसमें एक किसान मारा गया है और कई अन्य लोग घायल हुए हैं। पता चला है कि उत्तर पूर्व नाइजीरिया में बोको हराम के संदिग्ध चरमपंथियों ने एक गांव पर हमला करके कम से कम 60 लोगों की हत्या कर दी है। हमले की ये घटना बीते गुरुवार की बताई जा रही है। बीबीसी समाचार।
नमस्कार भारत में आज इतना ही, आपसे अगली मुलाकात होगी एक घंटे बाद विश्व भारती में। आज स्टूडियो संभाला देवाशीष कुमार ने, संदीप सोनी और निखिल रंजन को दीजिए इजाजत। नमस्कार।